está. Déjese en el cal. चल रहा हूं ऊपर व्यक्त संसार ये संसार के लोग इन सभी से पार पंच तत्व की इस दुनिया से पार मैं फरिश्ता उड़ रहा हूं आकाश में हूं फिर से वही हल्कापन और ऊपर उड़ रहा हूं और पहुंच गया अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख देख रहा हूं स्वयं भगवान खड़े हैं उसकी वरदानी दृष्टि मुझ पर है और उस दृष्टि से ही मैं आत्मा सारे वरदानों को धारण कर रही हूं बाबा की वह व्यक्त आवाज कानों में पड़ रही है वह अनहद नाद बच्चे विकर्मा जीत बाबा बच्चे विकर्म सन्यासी भव मैं बाबा को देख रहा हूं बाबा ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए हैं महसूस कर रहा हूं भगवान अपनी सर्वशक्तियां मुझे दे रहे हैं बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम इस संसार के हीरो एक्टर हो जाओ श्रेष्ठ संकल्प करो श्रेष्ठ बोल बोलो श्रेष्ठ कर्म करो बाबा की आवाज मैं सुन रहा हूं एक एक शब्द मुझ आत्मा में समा रहा है वरदान बन रहा है बाबा मुझे देख रहे हैं बाबा से दृष्टि ले रहा हूं बाबा की इस दृष्टि को मैं अपनी आंखों में समा रहा हूं अविरल प्रेम की धारा बह रही है परमात्म प्रेम से हृदय भर चुका है आंखें सजल हो रही है। कृतज्ञता का भाव, उपकार तुम्हारा है बाबा। किन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। ईश्वरीय वरदान को पाकर, समस्त ईश्वरीय शक्तियों को पाकर, परमात्मा दृष्टि को पाकर, प्रभु प्रेम से सराबोर होकर, मैं फरिश्ता अति प्रसन्न हूं और ऐसी ही खुशनुमा स्थिति को लेकर अब धीरे धीरे वापस नीचे आ रहा हूं और पुनः इस देह में प्रवेश करता हूं। ओम शांति। किसी एक गुरु के पास उसका एक शिष्य आया और उसने पूछा, पाप क्या है, विकर्म क्या है, लोग पाप क्यों करते हैं और पाप करने में कितना समय लगता है। गुरु ने कहा, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले जाओ और कहीं से भिक्षा ले आओ। तो वो शिष्य, वो सन्यासी शिष्य जाता है गांव में भिक्षा लेने। एक द्वार से दूसरे द्वार, किसी एक द्वार पर खड़ा हुआ जब भिक्षा के लिए पुकार लगाता है तो दरवाजा खुलता है और पाता है कि एक स्त्री खड़ी है। उस स्त्री को देखता है और उसके मन में हलचल होती है, सोचता है कितना थक गया हूं, अगर स्त्री से मैं कहूं कि थोड़ा देर अंदर रुक जाऊं तो ये मना तो नहीं करेगी ना। तो उससे कहता है, मैं बहुत थक गया हूं। तो वो भी कहती है, आइए अंदर बैठिए। दोनों की बातें होती है। शिष्य धीरे धीरे तो ये भूल ही जाता है वो आया किस लिए था। उससे बात करता है और बात करते करते धीरे धीरे उसके मन में प्रेम के भाव प्रकट होते हैं और वो उसके घर के बारे में पूछने लगता है कि घर में और कौन कौन है। तो वो कहती है, मेरे पिता है। कहाँ है, आते ही होंगे, पिता आते हैं। तो पिता जैसे ही आते हैं वो कहता है कि आपकी ये जो कन्या है मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। तो पिता भी बड़े खुश हो जाते हैं और दोनों का विवाह हो जाता है। खुशी खुशी से रहने लगते हैं। वो गुरु और वो भिक्षा भूल चुकी और फिर धीरे धीरे दो बच्चे भी हो जाते हैं। समय बीतता जाता और अचानक एक दिन फिर कई सालों के बाद बाढ़ आ जाती है गांव में। तो दो बच्चे और बीवी देखता है कि घर डूब रहा है परंतु पहले बीवी बच्चों को बचाना चाहिए। तो बीवी बच्चों को बचाते बचाते घर पूरा ही डूब जाता है। अपने बीवी बच्चों को लेकर उस गांव से वो निकलते रहता है, चारों ओर बाढ़ बाढ़, पानी ही पानी। एक बच्चे को बचाने जाता है, एक बच्चा बहने लगता है, एक को बचाने लगता है तो दूसरा बह जाता है। अब पत्नी बचती है और एक बच्चा बचता है। बाढ़ का पानी और बढ़ जाता है, नदी उफान पर है। एक बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है, बीबी का हाथ पकड़ा हुआ, पानी और जोर से आता है, बीबी को संभालने जाता है तो बच्चा बह जाता है, दूसरा भी, और दोनों चलते हैं, और बाढ़ और पानी। और फिर ऐसा समय आता है कि बीबी का भी हाथ छूट जाता है और बीबी भी बहने लगती है, परंतु वो सोचता है खुद को तो बचाऊं, और खुद को बचाते बचाते वो भी चली जाती है, और थका हारा खुद को किसी तरह बचाते हुए भागते भागते कहीं पहुंचता है और धड़ाम से नीचे गिरता है। कुछ समय के बाद आंख खुलती है तो गुरु कहते हैं कहां हो? सामने गुरुदेव खड़े हैं। वो कहता है मैं कहां हूं? गुरु कहते हैं मैंने तुम्हें भेजा था ना अभी अभी भिक्षा लेने के लिए, भिक्षा का क्या हुआ? तब उसे याद आता है कौन सी भिक्षा, ये सब क्या हो गया, कितने साल बीत गए। गुरु कहते हैं अभी तो जस्ट तुमने पलक झपकाई थी, साल कहां से गुजरे, ये सब तुमने क्या कर दिया, जो कुछ था वो सारा तुम्हारा स्वप्न था। कहां तुम स्वप्न में किसी के घर के पास चले गए, कहां तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब मर गए, और पर तुम तो यही हो। गुरु कहते हैं कि तुम्हारा यही प्रश्न था ना कि विकर्म कैसे होता है, क्यों होता है, कितने समय में होता है, यही उसका उत्तर है। विकर्म करने के लिए कितना समय चाहिए? एक सेकंड खाली। क्यों होता है? कहां से थोड़ी सी आसक्ति उत्पन्न हो जाए और वहीं से विकर्म की शुरुआत हो जाती है। व्यक्ति जान तब पाता है जब पूरी तरह उसमें फंस जाता है, तब तक नहीं उसे पता चलता है, तब तक सब ठीक ही लगने लगता है। अभी अभी मुरली में आया था मकड़ी का जाल, जब पूरी तरह उसमें फंस जाता है तब पता चलता है कि मैं फंस चुका हूं। तो आज की मुरली में बाबा ने चार प्रकार के कर्म बताए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला विकर्म, दूसरा सुकर्म, तीसरा साधारण कर्म, और चौथा व्यर्थ कर्म। चार प्रकार के संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, विकर्म के संकल्प, साधारण संकल्प और व्यर्थ संकल्प। तो आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? अपने विकर्माचीत अर्थात विकर्म सन्यासी बच्चों को देख रहे हैं। चर्चा का विषय है ये विकर्म क्या है। विकर्म की बहुत सूक्ष्म परिभाषा मुरली में आई है आज। हर वो कर्म जो विकार के वशीभूत हो किया जाए विकर्म है। फिर वो मन के तल पर हो सकता है, बोल के तल पर हो सकता है, कर्म के तल पर हो सकता है, वृत्ति में हो सकता है, दृष्टि में हो सकता है, स्वप्न में भी हो सकता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने कर्म के गति का ज्ञान दिया है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया कि हर वो कर्म जो विकार के वशीभूत हो किया जाए, चाहे स्थूल, चाहे सूक्ष्म, चाहे रॉयल, विकार के तीन रूप बताए हैं आज। एक है स्थूल विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांच। पांच सूक्ष्म, पांच सूक्ष्म। सबसे पहले काम का सूक्ष्म रूप है कामना, सांसारिक कामनाएं, किसी एक विशेष व्यक्ति के प्रति एक्स्ट्रा प्रेम, एक्स्ट्रा स्नेह। अभी अभी कुछ मास पहले संडे मुरली चली थी। पांच विकारों के पांच सूक्ष्म स्वरूप, किसी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा प्रेम होना, ये क्या है, काम का अंश है। क्रोध, क्रोध का सूक्ष्म रूप कौन सा, क्रोध का सूक्ष्म रूप एक है किराना, किनारा कर लेना, और चिड़चिड़ापन, किनारा कर लेना। उस मुरली में बाबा ने कहा था, एक है किनारा, दूसरा है चिड़चिड़ापन या रोब। अभी अभी संडे में एक मुरली चली थी कुमारों से मुलाकात, पिछले संडे के, पिछले संडे के, पिछले संडे। यदि रोब है तो, अगर सेवा में रोब है तो सेवा समाप्त, रोब के लिए कहा था। क्रोध का सूक्ष्म रूप, लोभ का सूक्ष्म रूप आवश्यकता, नीड और ग्रीड। नीड क्या है और ग्रीड क्या है। मोह का सूक्ष्म रूप, मोह का सूक्ष्म रूप अच्छा लगता है, ये भाई ये बहन अच्छे लगते हैं, मोह नहीं है, परंतु योग में यदि बाजू में बैठ जाए तो योग जरा अच्छा लगता है। मोह नहीं है, पर साथ साथ यदि मधुबन चले तो खुशी होती है। लगाओ, सूक्ष्म झुकाओ। अहंकार का सूक्ष्म रूप, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, अरे तुमने क्या किया, संगम पर जो भी कुछ हो रहा है कौन कर रहा है, वो कर रहा है। अगर वो चाहे, यहां जो हम आज बैठे हैं सभी कुमार भट्टी कर रहे, वो भी क्यों, जरूर उसी की कृपा है, उसी की अनुकंपा है। यदि उसका हाथ हमारे सिर पर ना हो तो हम ये पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। दिखाया है जब जब, महाभारत में भी अर्जुन को अहंकार आया या पांच पांडवों को अहंकार आया, तब तब उन्हें यह एहसास कराया गया कि तुम केवल निमित्त हो, कराने वाला वो है। दिखाया है महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, युधिष्ठिर रास्ते से चल रहा है, कुत्ते भौंक रहे, दरवाजे चोरी हो रही है, पूरे राज्य में हाहाकार मच चुका है। वो धर्मराज है, उसके राज्य में ऐसा क्यों। खबर आती है कि उधर अर्जुन को भी भीलों ने लूट लिया, इतना श्रेष्ठ धनुर्धर। संदेश भेजा जाता है कि ढूंढो क्या हुआ, श्री कृष्ण कहां है। पता चलता है श्री कृष्ण तो गए। जब तक श्री कृष्ण उनके साथ है तब तक वो शक्तिशाली, जैसे ही वो चले गए पांडव निर्बल हो गए। जब तक पांडव पति हमारे साथ है हम शक्तिशाली। यदि उसकी छाया, उसकी कृपा, उसकी अनुकंपा, उसकी दृष्टि हमसे हट जाए तो आज जो हम यहां बैठे हैं बैठ ना पाएंगे। जो आज हम यहां है, यहां जो चल रहे हैं इस श्रेष्ठ जीवन में उससे गिर जाएंगे। तो इसको कभी नहीं भूलना है। तो मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया करते हैं कि एक बहन है जिसमें बहुत सारी सेवाएं की, हजारों लाखों का कोर्स कराया, कई सारे सेंटर्स खोले, बड़ी बड़ी सेवाओं की वो निमित्त बनी, देश विदेश में सेवाएं की। उसने शरीर छोड़ा और बाबा के पास पहुंची। बाबा ने पूछा, बच्ची तुमने क्या क्या किया? भगवान ने पूछा, बाबा ने पूछा, उसने खुद नहीं बताया, बाबा पूछ रहा है। तो उसने कहना चालू किया, बाबा मैंने इतने लोगों का कोर्स कराया, इतने मैंने सेंटर खोले, इतनी कुमारियों को, कन्याओं को मैंने तैयार किया, इतनी देश विदेश में सेवा की, प्रोग्राम किए, मेगा प्रोग्राम किए, ये किया, फला किया, ढला किया, ऐसा किया, वैसा किया। खुद नहीं बता रही, बाबा ने पूछा इसके लिए। और लास्ट में बाबा ने कहा, बच्ची ये सब मैं कर रहा था, तुमने क्या किया? बच्ची ये सब मैं कर रहा था। जो भी श्रेष्ठ कर्म हमसे हो रहे कौन करवा रहा है? वो। और यदि कोई अहंकार से ग्रसित हो जाए कि मैं इतनी सारी सेवाएं कर रहा हूं, इतना सब कुछ मैं कर रहा हूं, तो ये विकार है। पांच विकार, पांच सूक्ष्म स्वरूप, और फिर है उनके रॉयल स्वरूप। वो रॉयल तो इतने सूक्ष्म है कि पकड़ में ही नहीं आते हैं, इतने सूक्ष्म है वो। काम का रॉयल स्वरूप एक है सूक्ष्म स्वरूप और एक है रॉयल स्वरूप। सुबह ब्रह्मचर्य की क्लास में हमने बहुत सारी बातें सुनी, यदि उनमें से किसी एक बात का भी खंडन हो रहा है सूक्ष्म अति सूक्ष्म, तो वो भी काम का ही अंश है। एक ऐसा जीवन जिसमें अनासक्त वृत्ति हो, किसी से कोई आसक्ति नहीं, आए कर्म किया, संबंध संपर्क में आए, काम पूरा हुआ और चल दिए, टाटा बाय बाय, आपका वो रास्ता, हमारा ये रास्ता। अगर रुक गए और संबंध को बढ़ाया तो उसमें धोखा हो सकता है। इसलिए अनासक्त रहना स्वयं को, क्योंकि काम का भरोसा नहीं, कहां से और कब आ जाए और किस रूप में आ जाए और किस संबंध में आ जाए, किसी भी संबंध में आ सकता है। युधिष्ठिर को पूछा गया है महाभारत में, जब तुम्हारी मां कुंती बैठी है तो क्या तुम्हारा मन काम से मुक्त है? किससे पूछा? धर्मराज। वो कहता है आई एम नॉट श्योर। ये महाभारत का प्रसंग है। काम, क्रोध, आंखों से क्रोध, चेहरे से क्रोध, मेरे से बिना पूछा कैसे किया? ये किससे पूछ के किया? रोब, और उसमें भी सूक्ष्म रोब, मोह। मोह व्यक्तियों के लिए एक पक्षी है, इच्छा रूपी पक्षी, उसके दो पंख है। एक पंख है मोह। मोह कहता है कि जो चीज मेरे पास है वो छूट ना जाए, और लोभ कहता है जो चीज मिली नहीं है उसे पा लेना है, ये लोभ है। और मोह कहता है जो मिल चुकी है अब ये किसी और को ना मिले, मेरे अतिरिक्त और कोई ना ले, उसको पकड़ के रखता है। और ये पक्षी है, तृष्णा रूपी पक्षी, इच्छा का ये पक्षी है, बहुत भटकाता है मनुष्य को। स्वयं को चेक करना है रोज, कहां हृदय फंसा हुआ है, किस में फंसा हुआ है, क्या वो व्यक्ति सदा का साथी है, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि वो कभी भी धोखा नहीं देगा। जितने मनुष्य है संसार में, हद है उनमें, आत्मा बेहद है, अनंत है, अनंत आत्मा को आदि अंत वाले मनुष्य कभी भी तृप्त नहीं कर सकते हैं, उसकी प्यास अनंत की है। तो मोह, अहंकार, इस ब्राह्मण परिवार में एक भाषा है, बाबा ने निमित्त बनाया, पर उसमें भी अहंकार, मुझे निमित्त बनाया, तुमको नहीं बनाया, यह अहंकार। यह भी इतनी आदत पड़ गई है कहने की कि बाबा ने निमित्त बनाया, यह कहना भी निमित्त मात्र हो गया है, किया मैंने ही, हमारा नाम होना चाहिए। यदि बहुत बड़ी सेवाएं हुई और हमने बहुत सेवा की और फिर सेवाओं का समाचार सुनाया गया और बहन जी ने हमारा नाम ही नहीं लिया, तो कई कुमारों को हम देखते दुख होता है, सब कुछ किया हमने और हमारा नाम ही नहीं है कहीं। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक भागदौड़ की हमने, और जब आभार का प्रोग्राम हुआ हमारा कोई नाम भी नहीं लेता है। मैं अंदर बैठा है, वो तृप्ति चाहता है। और दूसरा एक मार्ग है सेवाओं से, बाबा का नाम सामने रखना पर स्वयं को प्रत्यक्ष करना उसके नाम के पीछे, उसकी आड़ में, और उसको नाम देना सेवा। परंतु है वो मैं का विस्तार। हमने देखा है कई सारी आत्माएं जब बोलने लगती है तो बस यही वर्णन करती है, मैंने क्या क्या किया, यहां सेवा की, वहां सेवा की, ये सेवा की, वो सेवा की। जून का मास है, मम्मा दिवस आ रहा है, मम्मा के जीवन की एक बात है, मम्मा बेंगलोर गई, 3 मास तक बहुत सारी सेवाएं हुई, बहुत सारी सेवाएं। जब मम्मा वापस मधुबन में आई तो मम्मा से पूछा गया, मम्मा सेवा क्या क्या की, कैसी थी? मम्मा ने कहा, अच्छी थी, फुल स्टॉप, बस। वो तो वो भाई ने बाद में बताया क्या क्या सेवाएं हुई, कोई वर्णन नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। 3 मास तक इतनी सेवा करने के बाद कोई पूछता है क्या क्या सेवा की, अच्छी थी, फुल स्टॉप। यदि हम चले जाए 3 मास और सेवा करके आए तो फोटो सोशल मीडिया, फेसबुक और भेज रहे हैं सबको, उनको भी भेज रहे हैं जो चाहते ही नहीं है सुनना, जिन्होंने पूछा भी नहीं कैसा था। एक स्थान पर क्या नहीं गए, 100 फोटो कोई भेज देता है, फोटो ही फोटो। ये भी तो मैं है कहीं ना कहीं। मम्मा का उत्तर हमेशा याद रखना, सेवा कैसी थी, अच्छी थी, बस। ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी ने अपने एक आर्टिकल में बहुत सुंदर बात लिखी है, यंग इंडिया न्यूज़पेपर 1925, 6 अगस्त 1925, यंग इंडिया, उसमें एक आर्टिकल लिखा है कि उन्होंने कहा है कि जब मैं अफ्रीका में था, साउथ अफ्रीका में, वहां पे मैं गया एक ट्रैपिस्ट नाम की मोनेस्ट्री में, ट्रैपिस्ट नाम की एक मठ था, वहां गया और वहां जाकर देखा कि वहां के सभी लोग मौन में हैं। तो वहां के मठाध्यक्ष से, जो इंचार्ज थे, उनसे पूछा, ये सभी लोग बोलते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा, ये सभी मौन व्रत का पालन कर रहे हैं। गांधी जी ने पूछा क्यों, तो उस व्यक्ति ने कहा हम मनुष्य इतने निर्बल हैं, हम मनुष्य इतने कम बुद्धि वाले हैं कि हमें ये पता ही नहीं कब क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, और जब भी बोलते हैं तो गलत ही बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बोलने पर कंट्रोल नहीं है, अच्छा होगा कि हम चुप ही रहे, जब समझ में आ जाए क्या बोलना है तब बोलेंगे, अब तो पता ही नहीं है बोलना क्या है और क्या नहीं बोलना है, इसके लिए इस आश्रम का नियम है सब मौन रहे, चुप रहे, पहले यह समझ आ जाए कि बोलना क्या है। तो वर्णन, मैं की तृप्ति, अहंकार की तृप्ति, मैं भी कुछ हूं, मैंने भी कुछ किया है। लोग मधुबन जाते हैं बाबा से मिलने, वहां आने के बाद भी तपस्या एक तरफ और बाकी ही चालू है, घूमना फिरना, खरीदारी, इससे मिलन उससे मिलन, यहां जाना वहां जाना, भाग दौड़, और बाबा से मिलते हैं, फिर बाबा के दिन, उस दिन भी दिन भर बोलते रहते हैं, दिन भर कारोबार चालू रहता है, बाबा आते हैं, बाबा के सामने बैठते हैं, कोई अनुभव नहीं, वहां पर भी फोन पर बातें या भोजन में बुद्धि, वापस आते हैं और सेंटर पर आधा आधा घंटा तक अनुभव सुनाते हैं कि हमने ये अनुभव किया, हमने यूं किया त्यों किया, ऐसा किया वैसा किया, सूक्ष्म पाखंड है, स्वयं स्वयं को ही धोखा देना है, अनुभव इतना सस्ता नहीं है कि ऐसे ही मिल जाए, घनघोर तपस्या की आवश्यकता है, ईश्वरीय प्रेम के अनुभव के लिए धधकता हुआ वैराग चाहिए, ऐसी तपस्या चाहिए, तब कहीं जाकर वो अनुभव होता है, ऐसे ही चले गए और अनुभव हो गया, इतना आसान सस्ता, इतना सस्ता सौदा नहीं है ये, तड़प चाहिए, प्यास चाहिए, नहीं तो मैं प्रकट होता है। आए, इंग्लिश में कहावत है, क्लोज योर, ओपन योर आई एंड क्लोज योर आई, ओपन योर आई EY एंड क्लोज योर आई, हर वो कर्म विकार के अंश मात्र के वशीभूत हो किया जाए वो विकर्म है। ये आज की मुरली में बाबा ने विकर्म की परिभाषा दी है, इसलिए तुम्हें क्या करना है, सुकर्म करना है, तुम्हें क्या बनना है, सुकर्मी बनना है, तीन उदाहरण दिए हैं। पहला वैष्णव, वैष्णव जो होते हैं वो ऐसी वैसी चीजें तमोगुणी चीजें स्वीकार नहीं करते, अभी अभी मुरली भी चली थी, तुम हो सच्चे वैष्णव। दूसरा उदाहरण दिया है रॉयल कुल की बच्चे, स्वीकार नहीं करते कुछ भी, अगर नीचे कुछ गिर गया, एक विदेशी अभी अभी था मधुबन में, पानी की बंद बोतल गिर गई, वो कहता था मैं नहीं उठाऊंगा, रॉयल कुल के बच्चे नीचे गिरी हुई वस्तु नहीं उठाते, तो जो नीचे गिरा हुआ है वो हम नहीं उठाएंगे, जो शूद्र वस्तु है वो हम नहीं उठाएंगे, यह देह भी वैसा ही है, इस देह की आकर्षण। तीसरा उदाहरण दिया है, तुम कोर्स कराते हो तो क्या कहते हो, ये धारणाएं हैं, ये धारणाएं होनी चाहिए, इन इन बातों का निषेध है। तो हर वो कर्म जो विकर्म की कैटेगरी का है उससे क्या होना है, दूर हो जाना है, निषेध है वो, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड एक्शंस, प्रोहिबिटेड डीड्स। तो आप सभी अब बताओ कि ब्राह्मण जीवन में विकर्म किसे कहेंगे, वो कौन से कर्म है या कौन से शब्द है या कौन से संकल्प है या स्वप्न है जो विकर्म की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? एक परिभाषा विकर्म की ये भी है कि हर वो कर्म जो श्रीमत के अनुसार ना हो वो विकर्म है, हर वो कर्म जो आत्म अभिमानी स्थिति में ना किया हो वह विकर्म है। ये तीन विकर्मों की परिभाषा है। श्रीमत अनुसार नहीं है, आत्मिक स्थिति में नहीं है, विकारों के वशीभूत है, और चौथा बाप की याद में जो नहीं है वो भी विकर्म है। तो विकर्म कौन कौन से? उदाहरण सभी बताएंगे कौन कौन से विकर्म है। यहां से चालू करते हैं, कौन से विकर्म है बैठ के? वो तो हो गया, अब उदाहरण, प्रैक्टिकल उदाहरण कौन कौन से है? यह तो परिभाषा है, किसे विकर्म कर, कौन सा एक कर्म बताओ जिसे विकर्म कहेंगे, कोई भी बताए जल्दी जल्दी। वो तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो पक्के ब्राह्मण बन चुके हैं, उनके लिए बताइए। जो पक्के ब्राह्मण है, धारणाओं में चल रहे हैं, अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, नुमा शाम का योग करते हैं, रात को गुड नाइट करते हैं और फिर सोते हैं, ऐसी ब्राह्मण आत्मा के जीवन में विकर्म किसे कहेंगे वो बताओ। बाबा को पोता मेल न देना, बाप को पोता मेल न देना, ये विकर्म है। बाबा ने कितनी मुरलियों में कहा है बाप को सच सच सुना दो, छिपा के नहीं रखो, नहीं तो वो जो वुंड है, वो जो घाव है, नासूर और बड़ा हो जाएगा। सुप्रीम सर्जन को बता देना। एक तो छिपाना नहीं, छिपाना ये विकर्म है, चाट न देना ये विकर्म है, और वादा करना और फिर तोड़ देना, वादा करना कि हम संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और फिर किसी एक पल की, पल के आवेग में आकर वशीभूत होकर उसे तोड़ देना, विकर्म है। और हाँ क्या करना? भोग बिना लगाए खाना। हाँ बहुत सुंदर बात कही है। यहां पर जो बैठे कितने लोग हैं जो भोग लगाते हैं रोज? ऑलमोस्ट सभी। कितने भाई हैं जो खुद भोजन बनाते हैं? हमेशा बताया जाती एक सुंदर कहानी, बाबा के पास भोग की चार थालियां आई, बाबा के पास भोग की चार थालियां आई। पहली थाली आई मधुबन से, पैसा कमाने वाला कोई और, भोजन अनाज खरीदने वाला कोई और, यज्ञ का भोजन बनाने वाले माता है, उसमें भी कोई रोटियां बनाने वाली, कोई सब्जियां बनाने वाली, भोग लगाने वाला कोई और, परोसने वाला कोई और, ऐसी एक थाली। दूसरी थाली आई सेंटर से, कमाने वाला कोई और, भोजन बनाने वाला कोई और, भोग लगाने वाला कोई और, वो एक थाली बाबा के पास आई। एक थाली गृहस्थ से आई, कमाने वाला कोई और या फिर वही, खाना बनाने वाला कोई और या फिर वही जो कमा रहा है, भोग लगाने वाला वही, वो थाली बाबा के पास आई। और एक चौथी थाली बाबा के पास आई एक कुमार के पास से, जो कि खुद कमाता है, जो कि खुद कमाता है, खुद मेहनत करता है, खुद जाके सब्जी खरीदता है, खुद भोजन बनाता है, खुद बाबा को भोग लगाता है। अब बताओ सबसे पहले बाबा की दृष्टि किस थाली पर जाएगी? तो कुमार जिंदाबाद, जो खुद कमाते हैं और खुद भोजन बनाते हैं, मेहनत है बहुत, बहुत बड़ी मेहनत, उसके हम बाद में समाधान करेंगे, अभी पहले ये बात। तो जहां खुद भोजन बनाया जाता है उसमें वाइब्रेशंस भर जाते हैं, शक्ति भर जाती है। तो भोग न लगाना ये भी विकर्म में गिना जाएगा, सूक्ष्म विकर्म। जो भोजन नहीं बनाते उनको भी भोग लगाना चाहिए। किस चीज का भोग लगाएंगे? कहेंगे हमारा तो बनता है, परंतु गीता में लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, जो मुझे अनन्य भाव से भोग लगाता है, पत्र पुष्प या फल, हर दिन केवल फल का भी भोग लगा दे बैठकर कुछ समय, वो समय भी योग में गिना जाएगा। अपने ही कमरे में रोज एक निर्धारित समय पर, जो लोग सेंटर पर ही रहते हैं उनके लिए भोजन पहले से ही बनता है, वो क्या करें, उनको भी लगाना है। केवल फल, केवल पत्र, केवल पुष्प, भगवान को भोजन नहीं चाहिए, भावना। वो भोजन का भूखा नहीं है, उसे भावना चाहिए। तो भोग न लगाना ये भी विकर्म है। और व्यर्थ संबंध संपर्क, इस पर हमने एक बहुत बड़ी चर्चा की थी कभी क्लास में। व्यर्थ संबंध संपर्क कौन कौन से है? ऐसे संबंध बना रखे हैं कि मिलते हैं तो सबसे पहले मौसम की चर्चा, बारिश हुई नहीं हुई, आज धूप ज्यादा थी कम थी, क्या क्या बना, क्या क्या खाया, नाश्ते में क्या बना, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, क्या किस पार्टी का में क्या चालू है, किसने कौन सी पार्टी छोड़ी, क्रिकेट, वर्ल्ड कप, मिलते ही सबसे पहले यही चर्चा होती है। ये चर्चा नहीं होती कि बाबा ने वरदान में आज क्या बोला। अगर कोई कहे तो क्रोध, बड़े आए ज्ञान सुनाने। ज्ञानी अगर ज्ञान सुनाए तो एलर्जिक रिएक्शन होती है बहुत जबरदस्त। हम ब्राह्मण संचार संसार समाचार, ये है आज का ब्राह्मण संसार समाचार। ये सेंटर पर ये हुआ, वो सेंटर पर ये हुआ, यहां ये हुआ, वहां वो हुआ, मधुबन में ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ। व्यर्थ संबंध संपर्क बना के रखते हैं, मिलते हैं तो दूसरी बातें ही नहीं है, लौकिक के समाचार, लौकिक की बातें, फिल्मों की बातें, एक्टर्स की बातें, सीरियल की बातें, कौन जीतेगा उसमें। हमने एक बार, एक कटु अनुभव है, बाबा आए थे शांतिवन में, अवतरण का दिवस था, बाबा चले गए, उसके बाद किसी एक छत पे हम लोग बैठे थे और भोजन के लिए बुलाया था 11 बजे, बहुत समय पहले की बात है, कई वर्षों पहले की। तो दो तीन भाई बैठे थे और एक बुजुर्ग भाई बैठे थे, तो वो जो दो तीन भाई थे वो चर्चा कर रहे थे क्रिकेट मैच की। अभी अभी बाबा मुरली सुनाकर गए हैं, भोजन चालू है और चर्चा चालू है, तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, उस बुजुर्ग भाई ने, बहुत पुराने भाई ने कहा, अरे अभी अभी तो बाबा की मुरली चली है और आप ये सब चर्चाएं कर रहे हो। तो उन तीन चार भाइयों ने ऐसा उसको सुना दिया कि वो चुप ही हो गए। आपको क्या पता है, बाबा भी तो बैडमिंटन खेलते थे, इस तरह की बहुत सारी बातें। व्यर्थ संबंध संपर्क, वेस्टफुल रिलेशनशिप, बहुत बड़ी कैटेगरी है उसमें। मिलते हैं तो बस वही चर्चा, डिजिटल कॉन्वर्सेशन, कौन सा नया मॉडल आया है, कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, कार कौन सी नई आई है, उसी की चर्चा। कौन कौन से स्थान अभी रहे भारत में जहां हम नहीं गए, साइट सीइंग की चर्चा। ये देखा क्या तुमने, अभी तक देखा नहीं, कहां रहते हो, क्या क्या, जियो कब बंद हो रहा है, कौन सी फिल्म नहीं देखी, फिल्मों की चर्चा, एक्टर्स की चर्चा, एक्टर्स के जीवन में क्या हो रहा है, किसने शादी की और नहीं की, किसका संबंध किससे टूट गया है और नया अफेयर चालू है, उसकी चर्चा। शॉर्टकट्स कौन से, हर चीज में, जैसे कि वो भी एक है। और मुरली सुनते सुनते, चलो अगर किसी का अटेंशन ज्यादा रहता है वो करते समय, तो हम ये नहीं कह सकते हो कि गलत है। कोई ऐसे होते हैं कि वो सुनना भी चाहते हैं और साथ साथ पढ़ना चाहते हैं, तो वो कहते हैं हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ये हर एक का अपना है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो और कौन से विकर्म है? एक तो ये हो गया, और श्रीमत में मन मत मिक्स करना, उसके उदाहरण चाहिए हमको। मुरली में नींद, तीन तीन चार स्थान पर ब्राह्मणों को नींद आती है। सबसे पहला अमृत वेला, अमृत वेले में नींद करने वालों की एक कैटेगरी है। कहीं पर भी बिठाओ, भयंकर नींद, कितने भी बजे उठो, चाहे जल्दी उठो देर से उठो, नींद तो आना ही है। दूसरी कैटेगरी है मुरली में नींद वाले। तीसरी कैटेगरी है क्लास में नींद वाले, क्लास चल रही है उसमें नींद। नींद आना उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। शायद नींद पूरी नहीं हो रही है, हमें क्या पता किसके साथ क्या हो रहा है, किसकी जॉब ऐसी है, ड्यूटी ऐसी है कि देर रात से सोया है, बहुत सारी बातें हो सकती है। इसके लिए ब्राह्मण जीवन में दो चीजें सेट करनी है, भोजन और नींद। ये दो ही चीजें जो सेट करनी है योगी जीवन के लिए। तो नींद और विकर्म के उदाहरण, दूसरों की कमी कमजोरियों को फैलाना, जिसको कहते हैं गॉसिप मॉन्गरिंग, गॉसिप करना, वो मोह हो गया, वो हमने बोल दिया। और हाँ, कौन सी दृष्टि? अवगुणी दृष्टि, किसी के अवगुण ही देखते रहना, अलबेलापन, आलस, ये भी सूक्ष्म विकर्म है। तो ये सारे विकर्म है, हमें क्या बनना है? सुकर्मा बनना है, विकर्मी नहीं बनना है। विकर्म तो करते रहे, विकर्मों का बोझ। और इसके लिए बाबा ने एक विधि बताई है, अमृत वेले से रात तक जो कुछ करते हो, जो खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, किससे टैली करो? श्रीमत से। हर चीज के लिए श्रीमत मिली हुई है। बहुत सारी ऐसी गहरी मूल्यां हैं जिसमें बाबा ने दिनचर्या की चर्चा की है। स्पार्क में एक छोटी सी किताब है अलौकिक दिनचर्या, जिसमें बाबा के महावाक्य है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या उठना है, क्या बोलना है, कैसे करना है, हर चीज का उसमें वर्णन है। तो दिनचर्या में अलवेलापन, दिनचर्या में श्रीमत का उल्लंघन, यह भी विकर्म है। और एक विकर्म जिसकी चर्चा बाबा ने की है, व्यर्थ बोल और व्यर्थ समय गवाना। यह समय कितना अमूल्य है, तुम्हारा समय। उदाहरण दिए है बाबा ने भक्तों के, तुम्हारा जो संकल्प है वो कौन सी सेवा करता है द्वापर से? वरदान। तुम्हारा समय भक्तों के लिए क्या? दर्शन। तुम्हारे बोल, भक्त तड़प रहे हैं, आत्माएं तड़प रही है उसे सुनने के लिए। तुम्हारी दृष्टि, नजर से निहाल। और तुम्हारे कर्म, आत्माएं देखकर गदगद होगी कि बाप के साथ इन्होंने ये कर्म किए हैं। पांच चीजें हैं बाबा ने याद दिलाए, तुम हीरो हीरोइन एक्टर हो, तुम हीरो हीरोइन हो इस ड्रामा में। तुम्हारी हर एक्ट पावरफुल होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए, श्रीमत अनुसार होनी चाहिए। ऐसा कभी कोई ना सोचे कि ये किसी ने देखा नहीं। आज सुबह जो प्रोग्राम हुआ था उसमें वो मेजर साहब जी कह रहे थे ना कि ईमानदारी, ये नहीं समझो कि बंद कमरे में हम हैं और किसी ने देखा नहीं। एक गुरु अपने दो शिष्यों को दो कबूतर देता है और जाकर उनको कहता है कि जाओ इन दोनों, एक एक कबूतर जो दिया है उसको, उसकी गर्दन मरोड़ दो, उसको मार दो, पर ऐसी जगह कि जहां पर कोई ना देखे। तो पहला शिष्य है, जाता है गली में, देखता है कोई नहीं देख रहा है और उसको मार के लेके आता है। दूसरा शिष्य जो होता है वापस आता ही नहीं। दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाता है, तब भी आता नहीं। और एक दिन वापस आता है, परंतु वो कबूतर अभी भी जिंदा ही है। तो गुरु कहता है, क्या हुआ, तुमने मारा नहीं? वो कहता है, मैंने मारने की बहुत कोशिश की, पर क्या करूं, हर समय कोई ना कोई देख ही रहा था। गुफाओं में गया, वीरान जंगलों में गया, रेगिस्तान में गया, पर हर बार क्या हुआ, देखा, एक बार तो गुफा में चला गया, अंधार अंधकार था वहां पर, कोई नहीं था, परंतु मैंने देखा जैसे मारने गया वो कबूतर तो खुद ही देख रहा था। फिर मैंने कबूतर की आंख ऊपर पट्टी बांध ली, तो मैंने देखा मैं खुद ही देख रहा हूं, तो मैं कैसे मारूं। फिर मैंने अपनी आंख पर भी पट्टी बांध ली और उसको मारने गया, परंतु देखा कि मेरा जो अंतकरण है वो अब देख रहा है। हर स्थान पे मैंने ट्राई किया, परंतु हर समय कोई ना कोई तो देख ही रहा था। अपने अंतकरण को भी दबा दिया, पर देखा भगवान की आंखें देख रही है। क्या ऐसा कोई कमरा है कि जहां पर भगवान न देखे, और हम सोचे हम अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाए और देखते रहे, या मोबाइल में देखते रहे? क्या ऐसा कोई स्थान है संसार में? कोई स्थान नहीं। तो हमारा समय, हमारे कदम, हमारी हर स्टेप श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ समय। और फिर बाबा ने जो हमने सुबह आप सबको एक बात कही थी, कौन सा होमवर्क था वो? ऐसे ही। तो अब बताओ क्या क्या चिंतन किया, ऐसे ही में कौन कौन सी बातें आती है? ऐसे ही बात कर रहे थे, किसी की ग्लानी चालू थी और किसी ने आके पूछा क्या बात कर रहे हो, ऐसे ही बात कर रहे थे, और ऐसे ही लेग पुलिंग, ऐसे ही निंदा कर रहे थे, ऐसे ही ग्लानी कर रहे थे हम तो, ऐसे ही, और ऐसे ही मन बहलाने के लिए थोड़ा सा देख रहे थे, बाकी हमको इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है ये मूवीज और ये सब में, ऐसे ही थोड़ा सा मन बहलाने के लिए, मनोरंजन, मनोरंजन नहीं मनोभंजन है वो। ऐसे ही बैठे थे और बस टाइम पास कर रहे थे, ऐसे ही। ऐसे क्यों नहीं जाते का उत्तर, ऐसे ही नहीं जाते ऐसा, और ऐसे ही क्या क्या, ऐसे ही वैसे घूमने फिरने का मुझे इंटरेस्ट नहीं है, पर ऐसे ही थोड़ा कश्मीर चलो जा रहे थे तो सोचा कि जाके आ जाऊं, और ऐसे ही थोड़ा फेसबुक पे, बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों से बात करने में, ऐसे ही थोड़ा बना लेता हूं दोस्त, और मुझे तो जाने की इंटरेस्ट ही नहीं था बिल्कुल, पर उसने बुला लिया तो अब क्या करूं, इसके लिए ऐसे ही थोड़ा होकर आ गया, और ऐसे ही थोड़ा सा, बाकी हमको तो बाहर का बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करे फोर्स किया तो सोचा ऐसे ही थोड़ा सा। बाबा ने कहा है ना किसी को दुख नहीं देना है, अगर नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाते, तो श्रीमद छोड़कर किसी को सुख देना विकर्म है। और ऐसे ही दीपक भाई, ऐसे ही क्या ऐसे ही मुरली मिस करते, बाकी मैं कभी करता नहीं हूं, कभी कभी, और ऐसे ऐसे ही उदास बैठा था, बाकी अंदर में खुशी बहुत है, परंतु क्या करूं ऐसे ही उदासी आ गई, और ऐसे ही बाकी शादी विधि में तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर थोड़ा देखते ऐसे ही कर ली, नहीं ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा बताओ। ऐसे ही जरा सोच रहे थे और खुशी हो रही थी उसके बारे में सोच सोच के, अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे ही क्या कर लिया, ऐसे ही, बाकी पुराना तो था पर सोचा चलो नया नया आ जाए तो अच्छा है, और ऐसे ही और ऐसे ही ऐसे ही फोन पे बात कर ली। अब बात करते करते आधा घंटा गुजर गया, पता ही नहीं चला। हम तो ऐसे ही बातें कर रहे थे, ऐसे ही थोड़ी किसी की निंदा कर रहे थे, ऐसे ही थोड़ी मौसम की चर्चा कर रहे थे, ऐसे ही थोड़ी पॉलिटिक्स की बातें कर रहे थे, ऐसे ही अपने आप को अपग्रेड कर रहे थे, अपना नॉलेज बढ़ा रहे थे दुनिया के बारे में। वो तो पॉजिटिव हो गया, वो तो है ही। ऐसे ही थोड़ा सा झूठ बोले, बाकी हमको आदत नहीं है झूठ बीट बोलने की, हम हमेशा सत्य ही बोलते। ऐसे ही थोड़ा सा लेट हो गया, बाकी तो मैं टाइम पर ही आता हूं हमेशा। ऐसे ही बहन जी ने कहा ये सेवा करो, पर ऐसे ही ना कह दिया, कोई ऐसा कारण नहीं था विशेष, ऐसे ही झूठ बोल दिया कि नहीं मैं बिजी हूं। ऐसे ही घूमने चले गए थे थोड़ा, नाम सेवा का, नाम सेवा का। और एक ग्रुप था किसी रिट्रीट सेंटर पर गया भाइयों का, अपने सेंटर में ये बताते कि बता के कि हम योग करने जा रहे, तपस्या करने जा रहे, दो दिन की भट्टी करने जा रहे दूसरे किसी रिट्रीट सेंटर पर। वहां पहुंचे, बाबा के कमरे में गए, कमरे से बाहर निकले और फिर प्रोग्राम बनाया पूरे शहर का घूमने का, क्योंकि शहर में बहुत सारी चीजें हैं जहां गए नहीं। हर जगह घूमा, यहां घूमा, वहां घूमा, करते करते दो दिन हो गए और लास्ट में एक घंटा बाबा के कमरे में बैठ के आ गए, दो दिन की योग भट्टी। बता के तो यही आए थे कि योग भट्टी करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़ा सा घूम लिए और ऐसे ही थोड़ा सा, बाकी ये मेकअप वेकअप से हमको ज्यादा पसंद नहीं है, पर क्या है थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा स्टाइल वगैरह रही। तो आज अमृत वेला कोई खास कारण नहीं था, थोड़ी सी नींद आ रही थी बस। एक बार ज्ञानामृत में 108 कारण आए थे मुरली मिस करने के, मुरली न जाने के 108 कारण। निकल ही रहते तो मेहमान आ गए, निकल ही रहते तो बारिश, सुबह निकल ही रहते तो बुखार जैसा लग रहा था, वैसे था नहीं, थर्मामीटर में तो कभी दिखाता ही नहीं, ये थर्मामीटर ही गलत है, बाकी बुखार तो है, लग रहा है और बाबा को भी पता है बुखार है। रात को सोते समय ही संकल्प करके रखा था कि बुखार है बाबा, कल अमृत वेला छुट्टी, पहले ही शक्तिशाली संकल्प कर लिया, अगर उठाया भी तो सोच लेना इधर बुखार चल रहा है, थोड़ा सा बदन दर्द, थोड़ी सी थकान भी तो है। ऐसे ही और ऐसे ही टीवी देख रहे थे, कोई खास इंटरेस्ट तो है नहीं हमको, और ऐसे ही मैसेज, ऐसे ही होमवर्क नहीं किया, कोई खास कारण नहीं था, ऐसे ही। एक क्या, एक एक थोली और मांग ली ऐसे, बाकी खाने पीने का कोई ज्यादा हमको शौक नहीं है, परंतु ऐसे ही थोड़ा ले लिया। और हो गया घूमने का, ऐसे ही गलती हो गई, ऐसे ही सोच लिया, और हमने तो ऐसे ही बोल दिया, कोई बोलने का ऐसा भाव नहीं था, पर ऐसे ही किसी को टॉन्ट मार दिया, ऐसे पर कमेंट कर दी, ऐसे ही किसी का व्यंगबान छोड़ दिया। व्यंगबान होता है ना, हंसी वाला, जले पर नमक छिड़कना, ये सारा कर दिया। तो ऐसे ही नहीं, हीरे जैसा, बाबा ने मुरली में कहा है, ऐसे नहीं हीरे जैसा, ऐसे ही की माया है ये, दो शब्दों की, ऐसे ही कहां से कहां पहुंचा देती है। चालू भाषा, बाबा ने कहा यह ब्राह्मणों की चालू भाषा है, नॉर्मल भाषा, जैसे करंट भाषा, इसके लिए ऐसे कर्म हो जिससे डबल फ्रूट मिले। क्या मिले? डबल फ्रूट, वर्तमान भी और भविष्य में भी, खुशी भी और शक्ति भी। डबल फ्रूट की चर्चा की है। सारी मुरली को अगर देखो तो एक बात नजर आती है, चलो विकर्म तो छूट गए, परंतु व्यर्थ और साधारण कर्म भी ना हो, क्योंकि तुम हीरो एक्टर हो। सोचो हम यहां बैठे हैं और ये विश्व का स्टेज है, सारी दुनिया हमको देख रही है, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से हर ओर से संसार की आत्माएं हमको देख रही है। और हीरो की एक भी अगर गलती हो मूवी में कितनी उसकी चर्चा होती है अखबारों में और सब जगह। हमारी एक गलती, हम रोल मॉडल है आत्माओं के लिए, जैसा हम करेंगे वैसा वो करेंगे। एक एक संकल्प विश्व तक पहुंच रहा है। अगर विकार का संकल्प यहां उत्पन्न होता है उसकी तरंगे संसार में जा रही है, अगर व्यर्थ यहां जन्म लेता है उसकी तरंगे संसार में जा रही है। सोचो सीसीटीवी लगे हुए हैं हर समय हमारे कमरे में, हमारे ऑफिस में, रास्ते में, हम क्या सोच रहे हैं, क्या संकल्प कर रहे हैं। हमारा एक एक संकल्प श्रेष्ठ हो, महान हो। यहां पर मुरली पूरी की, उसके बाद पार्टियों से मुलाकात, पांच पार्टियां हैं। सबसे पहला सागर, सागर के समीप तुम बैठे हो, सारे खजाने तुम्हारे हैं, हर समय कमाई कर रहे हो। क्या ऐसा नशा रहता है, अखूट खजाने हैं। यह अनुभव करना, वास्तव में मुरली को क्या कर देना, ड्रिल बना देना, विजुलाइज करना। मुरली को पढ़ना नहीं है, विजुलाइज देखना है मुरली को। सागर है, सागर के किनारे हम बैठे हैं, खजाने हम में भर रहे हैं। ज्ञान गुण शक्तियां खुशी पवित्रता दिव्य गुण सब कुछ भर रहा है, पुण्य कर्म श्रेष्ठ कर्म संतुष्टता सारे खजाने मुझ में समा रहे हैं। जैसे अमृत वेला एक सागर के किनारे हम बैठे, सारे रत्न उसमें है जो मुझ में आ रहे हैं। दूसरे बाटी के साथ निर्बंधन, योग युक्त और निर्बंधन, एक ही शब्द वहां से ले रहे हैं हम, विस्तार तो बहुत है। स्वयं को चेक करना है, कोई बंधन तो नहीं, अपने बंधनों को हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। हम जितना स्वयं के बंधनों को जानते हैं, वो संस्कार का बंधन हो सकता है, किसी संबंध का बंधन हो सकता है, कोई स्मृति का बंधन है। जैसे ही वह स्मृति आती है स्थिति नीचे चली जाती है, बाकी स्थिति स्थिर रहती है, परंतु वो एक स्मृति है, एक ही मेमोरी है, पास्ट की दुखद घटना या विकार की घटना या और कोई, वो जैसे ही आती है हम वहीं पहुंच जाते हैं, 4 साल पहले 5 साल पहले। जैसे मधुबन में कोई माता है और मधुबन में सेवा के लिए आई है और बाबा की बहुत याद है, बाबा की बहुत लगन है, घर में विरोध है, वो सब झगड़ा करके सहन करके मधुबन में आई है और मधुबन में बाबा की याद में लगन से सेवा कर रही है और रोटी बेलते बेलते अचानक अपने नाती की याद आ जाती है और आंखों से आंसू आने लगते हैं। याद और उसका तुरंत स्वरूप, संकल्प और सीधा स्वरूप आंसू। उसी तरह पास्ट की कोई घटना, उसकी मेमोरी याद आते ही यहां का सब कुछ आसपास का भूल जाता है और आत्मा उसी घटना चक्र के उसी समय में पहुंच जाती है और वही अनुभव फिर करने लगती है। वो यदि परमात्मा प्यार का वाक्य इंसिडेंट हो तो वैसा होगा, यदि वो विकार का हो तो भी वैसी ही स्मृति हो जाएगी। इसके लिए मैं निर्बंधन आत्मा हूं, यह याद करना है, योग युक्त आत्मा हूं। तीसरा क्या था, कौन बताएगा? तीसरी पार्टी से मुलाकात, क्या स्वमान? दूसरा स्वमान था, तीसरा बंधन वाला था। तो स्वमान, 4 स्वमान दिए है बाबा ने, कौन कौन से? मैं ऊंचते ऊंच ब्राह्मण आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, और चौथा मैं पुण्य करने वाली पुण्य आत्मा हूं। एक स्टेप तो है कि याद रखना है, अब परिस्थितियां नहीं है तब भी अगर याद नहीं, तो परिस्थितियां जब आएगी तब कहां से याद आएगा ज्ञान? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, यह सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है, यह ऑटो सजेशन है, एक तरह से सेल्फ हिप्नोसिस है, जिसको हम स्वयं को उसी स्थिति में स्थित कर रहे हैं। और जो जिस स्थिति में स्थित रहता है वो स्वतः ही वैसा बनने लगता है। दो नियम है सृष्टि के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ फेथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो संकल्प हम करेंगे वो संकल्प प्रकृति में जाएगा और उसी तरह के संकल्पों को आकर्षित करेगा। मैं संकल्प करता हूं मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, वो गरीबी का संकल्प जाएगा। इस कायनात से जो गरीबी वाले संकल्प है वो एकत्र होंगे और घटनाओं का निर्माण होगा। संकल्प प्रकृति, रिएक्शन प्रतिक्रिया और घटना, इसके लिए जो भी मेरे जीवन में आज हो रहा है वो मेरी रचना है, मैंने उसे निर्माण किया है अपने संकल्पों से। कोई भी दोषी नहीं है, दूसरा कोई भी दोषी नहीं है। तो क्या हम संकल्प कर रहे हैं? ये संकल्प, मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे ये चीज नहीं आती है, दूसरे मेरे से आगे है, ये मुझे कम आता है, ये सब कमजोर संकल्प है। जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा लॉ ऑफ फेथ, विश्वास का नियम। जिस जिस बात में आपका विश्वास है तो वो घटनाएं घटेगी। यदि हम विश्वास से कहे कि मैं महान आत्मा हूं तो स्वतः ही सर्व जीवन महान बन जाएगा। परंतु ये कहो कि मैं महान हूं ही नहीं, मेरे में कोई महानता ही नहीं है, मेरे में तो विकार उत्पन्न होते हैं, दोष है। एक शिष्य गुरु के पास गया और कहने लगा कि क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? गुरु ने कहा क्यों नहीं। उसने कहा कि नहीं, मैं तो व्यसनी हूं, पापात्मा हूं, व्यभिचारी हूं, संसार में ऐसा शायद ही कोई पाप है जो मैंने नहीं किया, क्या फिर भी आप मुझे स्वीकार करोगे? गुरु कहते हां क्यों नहीं करूंगा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, क्योंकि भगवान ने तुम्हें स्वीकार किया है, मैं भी तुम्हें स्वीकार करता हूं। परंतु वो कहता है, गुरु उसको कहता है, तुम्हें एक बात करनी पड़ेगी, यदि तुम्हारा मुझ में इतना विश्वास है कि तुम मेरे पास आए हो और मैं भी तुम में इतना विश्वास रख रहा हूं, तो एक बात करना, जब भी पाप कर्म करने जाओ बस एक बात याद रखना कि मैं वहां उपस्थित हूं, और फिर करना पाप। शिष्य वो जो व्यक्ति होता है जाता है, और जैसे ही विकारों की या व्यसनों की बात सामने आती है, गुरु की दो आंखें दिखाई देती है और वो कर ही नहीं पाता। एक हफ्ते के बाद वापस आता है, गुरु कहता है क्या हाल है तुम्हारे पापों का? वो कहते हैं कैसे पाप, अब मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूं, क्योंकि जब भी मैं कुछ करने जाता हूं आपकी आंखें सामने आती है। तो संकल्प में भी हमारा फेथ हो, मैं महान आत्मा हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं ऊंचते ऊंच ब्राह्मण आत्मा हूं, तो स्वतः ही माया जीत बन जाएंगे, माया आ नहीं सकती। तो दूसरा ये था, तीसरा बंधन का था, चौथा पैरा समान। उसके बोल हमारे बोल, उसके संकल्प मेरे संकल्प, उसके कर्म मेरे संकल्प, उसकी दृष्टि मेरी दृष्टि, उसकी वृत्ति मेरी वृत्ति, समान हो। ये बाप समान स्थिति, वो विश्व कल्याणकारी तो मैं भी विश्व कल्याणकारी, यदि मैं विश्व कल्याणकारी हूं तो किसी भी एक आत्मा के प्रति भी मेरे मन में घृणा नहीं हो सकती। पिछले संडे की मुरली, त्याग किसका करना है? एक तो घृणा और दूसरा लगाव और झुकाव संबंधों में। क्या अंदर में किसी व्यक्ति के लिए घृणा है तो कैसे संपूर्ण बनेंगे? तो बाप समान अर्थात बहुत ऊंची अवस्था है। पांचवा, सेवा की भागदौड़ को क्या समझो? मनोरंजन। कितनी सुंदर बात कही है, किसकी सेवा है। परंतु ऐसा ना हो जाए कि सेवाओं के जंगल में स्थिति खो जाए, तपस्या ही समाप्त हो जाए, वैराग नष्ट हो जाए, पहला सब्जेक्ट विश्वविद्यालय का ज्ञान है योग धारणा और फिर सेवा, त्याग तपस्या और फिर सेवा। दादियों ने पहले तपस्या की फिर सेवाओं में उतरे, परंतु आज के युग में ज्ञान में आते हैं और तुरंत सेवा चालू हो जाती है, तपस्या करता ही नहीं है कोई, और फिर उस सेवा में संघर्ष, उस सेवा में टकराव, उस सेवा में अनबन, डिससर्विस ही उससे ज्यादा हो जाती है। हम सोच रहे सेवा है, एक तो बहुत अच्छी बात नहीं है, पर बताते हैं, कभी रमेश भाई जी ने बताई थी, एक सेंटर के लोग गवर्नर के पास गए शिवरात्रि का इनविटेशन देने के लिए, सेक्रेटरी से मिले उस राज्य के और कहा कि हमारे यहां ब्रह्मा कुमारी इसका शिवरात्रि का प्रोग्राम है, आप वहां आइए। थोड़े देर के बाद दूसरे सेंटर के लोग उसी शहर के उसी सेक्रेटरी के पास गए गवर्नर को इनविटेशन देने कि हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका प्रोग्राम है, आप हमारे पास आओ। तो सेक्रेटरी ने कहा ऑलरेडी आपके लोग आए थे, हम वहां जा रहे हैं। तो उसने कहा वहां नहीं जाओ, वो लोग अच्छे नहीं है, हमारे इधर आओ। हद, सेवाओं में टकराव, मतभेद, संघर्ष, क्या ये करने आए थे यहां? ऐसी सेवा से तो न करना ही अच्छा है, चुप रहो तो सेवा होगी, बजाय इसके कि इस तरह से उपद्रव हो। तो सेवा क्या बन जाए, सेवा की भागदौड़ हो रही है परंतु अंदर के तार उससे जुड़े रहे, वैराग हो, लगन हो, ज्ञान का चिंतन और स्मरण हो, क्योंकि ज्ञान ही भूल जाता है लोगों को। ब्राह्मणों को दो चीजों के पीछे ब्राह्मण ज्यादा भागते, एक सेवा और दूसरा योग। ज्ञान का जितना चिंतन होना चाहिए, जितना मनन होना चाहिए, जितना विस्तार होना चाहिए, जितना अध्ययन होना चाहिए, जितनी चर्चा होनी चाहिए, वो नहीं है। हम इस भट्टी से एक ही चीज चाहेंगे कि जो भी कुमार यहां बैठे हैं इतने सारे, सभी अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लें। अगर साथ में रहते हैं तो रोज रात को बैठ के दो लोग भी बैठे और ज्ञान की चर्चा करें, अव्यक्त मुरली की चर्चा करें, या कोई एक सीरीज आप अपने आप चालू कर दो लोगों की, छोटी छोटी सीरीज है, स्पार्क की किताबें हैं, या अव्यक्त मुरली है, एक दिन आप पढ़ेंगे एक दिन वो पढ़ेगा और उसके ऊपर चर्चा, या फिर अव्यक्त वाणी अगर नहीं करनी है तो साकार मुरली, आज बाबा ने सुबह क्या कहा, कौन सी पावरफुल पॉइंट थी मुरली में, कौन सी शक्तिशाली पॉइंट थी, उसके ऊपर क्या करना है, चर्चा करनी है, लेन देन करनी है। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है, वाह रे मैं ब्राह्मण आत्मा एक किताब है, उसमें संकलन किया हुआ है ब्राह्मणों के 10 कर्तव्य, 10वें कर्तव्य में 10वां कर्तव्य, 10 या 14 कर्तव्य, 14वां कर्तव्य लिखा है ज्ञान की चर्चा करना, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। क्या हम ज्ञान की उतनी चर्चा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ज्ञान ही स्पष्ट नहीं है, केवल शब्द है, परंतु शब्दार्थ, भावार्थ, गुणार्थ, वाक्यार्थ क्या है? स्पीकर यहां बैठा है, ऑडियंस यहां है, उसकी स्थिति इधर है, यहां से मुरली चल रही है, हम यहां सुन रहे हैं, और वो भी खाली शब्दों को पकड़ रहे हैं, वो भी थोड़ा समझ रहा है थोड़ा नहीं समझ रहा है। वो अगर यहां स्थित है और यहां से अगर मुरली चल रही है तो हमारी स्थिति भी यहां हो तो ही वो मुरली जो है जैसी है वैसी समझी जा सकती है, नहीं तो नहीं। तो आज की मुरली में कौन कौन से स्वमान बाबा ने कहे, पूरे स्वमान बताओ। मैं, सारी मुरली से स्वमान अगर निकालने हैं तो कौन कौन से निकलेंगे? पहला, मैं विकर्माचीत आत्मा हूं, मैं विकर्म सन्यासी आत्मा हूं। दूसरा, मैं सुकर्मी आत्मा हूं, सुकर्मा हूं। अगला, मैं व्यर्थ का त्याग, करने वाली आत्मा हूं, मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूं, इस विश्व मंच पर हीरो एक्टर हूं। अगला, मैं वैष्णव हूं, मैं सच्चा वैष्णव हूं, मैं रॉयल कुल की देवात्मा बनने वाली आत्मा हूं, रॉयल कुल की आत्मा हूं। मैं दूसरों को नियम सिखाने वाली हूं, स्वयं नियमों का पालन करने वाली हूं, वो आत्मा नहीं हूं जो चीजें निषेध है, प्रोहिबिटेड है, वो खुद करने वाली नहीं हूं। अगला, आज की मुरली से, आज की मुरली में नहीं है, हाँ, मैं महान भाग्यवान आत्मा हूं, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं, मुरली में आया है। अगला, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, ऊंचते ऊंच ब्राह्मण आत्मा हूं, और मैं निर्बंधन आत्मा हूं, मैं आज की मुरली से बताओ, आज की मुरली से शब्द होने चाहिए, मैं बाप समान हूं। किन किन बातों में समान? संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, स्वप्न में भी समान। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं बाप जैसे विश्व कल्याणकारी है वैसे मैं भी विश्व कल्याणकारी हूं, तो इसके ऊपर चिंतन लिखना है सभी ने। यदि मैं विश्व कल्याणकारी हूं तो मुझ में क्या क्या नहीं होना चाहिए? मैं सागर के रत्नों की अधिकारी आत्मा हूं, मैं सागर के जो खजाने हैं उससे भरपूर आत्मा हूं, और मैं निर्बंधन आत्मा हूं, मैं योग युक्त आत्मा हूं, और मैं सेवा की भागदौड़ को भी क्या करने वाली हूं? मनोरंजन समझने वाली आत्मा हूं, परेशान होने वाली नहीं। और एक बात रह गई है, मुरली से पंजाब ग्रुप से मुलाकात। पंजाब को किसकी आदत है? मेवा खाने की आदत ही है पंजाब वाले। क्या कहा है बाबा ने? मेवा की बात की है, सेवा में सेवा करके मेवा खाने वाले। वैसे भी पंजाब वालों को मेवा खाने की वो आदत ही है, अव्यक्त महावाक्य है। और मेला और मिलन, दूसरों का भी मिलन बाप से मनाने वाली हम आत्माएं। सारी मुरली अगर देखो तो रत्न है, एक एक शब्द, एक एक वाक्य। कितनी बार पढ़नी चाहिए ऐसी मुरली? कितनी बार पढ़नी चाहिए? एक सेकंड, हजारों हीरो के बराबर है। आज की मुरली में भी है, यही कहा है, तुम्हारा एक एक सेकंड। परंतु हम पूछ रहे मुरली कितनी बार पढ़नी चाहिए? प्रैक्टिकल वाली बातें बताओ, हवा में नहीं। जब तक वो हमारे स्मृति पटल पर छप ना जाए तब तक वाक्य वाक्य आंखों से नजर आए, यहां पर आसमान पर लिख ही दिया जाए, अग्नि से आग से लिखे हुए महावाक्य है। जैसे तुम विकर्मा चीत आत्मा हो, विकर्म नहीं कर सकते, सुकर्मा आत्मा हो, व्यर्थ का त्याग करने वाली आत्मा हो, शब्द शब्द छा जाए हृदय में, बस जाए हमारे विचार और मुरली के वाक्य एक हो जाए, तो कहा जाएगा कि मुरली का अध्ययन किया। पढ़ना नहीं है केवल, स्वाध्याय। दिनचर्या देखी है हमारी बीकेएस की, ब्राह्मणों की दिनचर्या, वो डायरियों के पीछे लिखी रहती है, मधुवन में भी लिखी है किसी के पास लिखी अभी? उसमें दोपहर का टाइम देखो क्या लिखा हुआ है, किसके पास डायरी है? दोपहर का टाइम क्या लिखा हुआ है? 2:30, सेल्फ स्टडी स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात खुद से अभ्यास करना, खुद से अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना, उसकी स्टडी करना, उसकी गहराई में जाना, एक एक वाक्य को निकालना वहां से। अभी हमने जो चर्चा की, हमें लगता है यही क्लास यदि हमने पांडव भवन में कराई होती तो कुछ और होती, क्योंकि सुबह से यहां पर इतना उसके ऊपर चिंतन करने के लिए हमें समय नहीं मिला। नहीं तो एक एक मुरली जो है वो खजाना है, इतनी गहराई में उसकी जा सकते हैं, एक एक शब्द की गहराई में जा सकते हैं। जितनी भी चर्चा करो ऐसा लगता है केवल ऊपर ऊपर चल रही है, जब तक उसका स्वरूप बनकर हम देखते हैं। जब भी हमें कोई मुरली पर क्लास करानी होती है, सारा दिन हमारा मौन होता है, संपूर्ण मौन, और उस मौन में वो जो चिंतन होता है, वो जो अध्ययन होता है, और बोलते समय हम वहां रहते ही नहीं है, वो जैसे बहुत ऊंची स्थिति होती है, और उस ऊंची स्थिति में जब उसको पढ़ा जाता है, चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है, तो ऐसी ऐसी बातें, नई बातें आ जाती है जो हमने भी सोची नहीं थी। तो मुरली का गहराई से चिंतन। आज इंटरनेशनल योग है, थर्ड संडे है ना आज, तो चलो अभी सभी योग में बैठेंगे।